आज है 17 जून दिन बुधवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। ललित मोदी की मदद को लेकर कांग्रेस ने बोला सुषमा स्वराज पर हमला, कहा सरकार दे सवालों के जवाब। छत्तीसगढ़ में क्यों राज्य सरकार ने बंद किए 3,000 सरकारी स्कूल।
मैं क्लास 14 में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल बंद हो गया है। जो दूसरा स्कूल है वो बहुत दूर है, इसलिए वहाँ मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। दूसरा स्कूल बहुत दूर है।
नरेंद्र मोदी ने की नवाज शरीफ से फोन पर बात। इस्लामिक स्टेट का रास्ता रोकने वाले कुर्द लड़ाकों की क्या है मुश्किलें।
इनके पास इनकी मैथोलॉजी है, इनके पास अपनी हिस्ट्री है, इनके पास आइडेंटिटी है, इनके पास जो फोकलोर है, इनके पास सारी चीजें हैं सिवाय स्टेट।
जानेंगे दुनिया जहां में, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को यात्रा के लिए दस्तावेज दिलाने में मदद करने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर कांग्रेस ने कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुषमा स्वराज पर संबंधियों से पक्षपात का मामला बनता है। उन्होंने एनडीए सरकार से ललित मोदी के मामले में यूपीए सरकार और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हुए पत्राचार को सार्वजनिक करने की मांग की। पलामू मुठभेड़ मामले में झारखंड राज्य के मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। राज्य सरकार को 4 हफ्ते के भीतर इस नोटिस का जवाब देना होगा। इस मामले में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नारायण राय ने नोटिस की पुष्टि की है और कहा है कि इसकी कॉपी मुख्य सचिव और डीजीपी को भी भेजी जा चुकी है। नोटिस का जवाब 4 सप्ताह के भीतर देने को कहा गया है। गत 9 जून की रात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और पलामू पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कथित तौर पर 12 माओवादियों को मार गिराया गया था। इस कथित मुठभेड़ के अगले दिन ही इस पर सवाल खड़े होने लगे थे। माओवादियों ने निर्दोष लोगों के मारे जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मुठभेड़ में मारे गए 7 लोगों की पहचान की थी। बाकी 5 लोगों की पहचान की जानकारी माओवादियों के एक संगठन ने मीडिया को दी थी।
ये थे हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के राजदूत रूस पर लगे प्रतिबंधों को 6 महीनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 1 साल पहले रूस पर यूक्रेन में दखलंदाजी करने और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों की मदद करने के लिए रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र में प्रतिबंध लगाए गए थे। नाइजीरिया के उत्तरी इलाके में बोको हराम के एक पूर्व ठिकाने में छूटे हुए विस्फोटकों के गुप्त भंडार में धमाका होने से 20 लोग मारे गए हैं। मोनगुनो में नाइजीरिया के सैनिकों के साथ कैंप की तलाशी में लगे स्थानीय लोग इस धमाके में मारे गए हैं। बोको हराम के छोड़े हुए कैंपों में विस्फोटकों की मौजूदगी से स्थानीय लोगों के लिए खतरा होने की बात सामने आई है, जिससे विस्थापित हुए लोगों को वापस उनके घर भेजने को लेकर संदेह बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स नाम की बीमारी को लेकर विश्व के सभी देशों को सचेत रहने के लिए कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उप डायरेक्टर ने सेजोंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसे लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। दक्षिण कोरिया में मर्स से अब तक 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मदद से उठा विवाद आज 4th दिन भी सुर्खियों में छाया रहा। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से इस मुद्दे पर कई सवाल किए और उनका जवाब देने को कहा। तो वहीं राजधानी दिल्ली में सुषमा स्वराज के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए। उधर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना था कि अगर ललित मोदी ने कोई अपराध किया है तो जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज के घटनाक्रम पर नितिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
बुधवार का दिन भी एनडीए सरकार और उनके कुछ शीर्ष नेताओं के लिए भारी पड़ा। शायद ही कोई घंटा ऐसा बीता हो जिसमें किसी न किसी ने ललित मोदी को सुषमा स्वराज से मिली कथित मदद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी न की हो। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने चेन्नई में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार से ललित मोदी मामले पर भारत और ब्रिटेन के बीच हुए पत्राचार को सार्वजनिक करने की मांग की गई। चिदम्बरम कह रहे थे कि ललित मोदी के पास अब दोबारा से भारतीय पासपोर्ट है, तो फिर केंद्र सरकार ने उन्हें भारत वापस लाकर मुकदमा चलाए जाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर वित्तीय हेराफेरी के आरोप लगाए हैं। उन आरोपों के बाद से ललित मोदी ब्रिटेन से भारत ही नहीं लौटे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर ललित मोदी के ब्रिटेन प्रवास में मदद का आरोप है। हालांकि सुषमा स्वराज की पार्टी ने उनका समर्थन आज भी जारी रखा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद,
इन द केस ऑफ सुषमा स्वराज नॉट ओनली शी हरसेल्फ बट द पार्टी प्रेसिडेंट।
रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि सुषमा स्वराज के मामले में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली समेत उन्होंने भी साफ कर दिया है कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद मानवीय आधार पर की और भाजपा पूरी तरह से उनके समर्थन में है। इधर सुषमा स्वराज का भी गुस्सा ट्विटर पर तब दिखा जब उन्होंने एक ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि सुषमा की बेटी विदेश पढ़ने किसी कोटे में गई थी। सुषमा ने जवाब में लिखा कि मेरी बेटी बैरिस्टर है और अपने बलबूते पर ऑक्सफोर्ड पढ़ने गई थी। बहरहाल मामला कल से थोड़ा और पेचीदा हो चुका है, क्योंकि इसमें राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम आ चुका है। खुद ललित मोदी की टीम से जारी की गई जानकारी से पता चला कि वसुंधरा राजे ने कथित तौर से ललित मोदी की मदद करने की पेशकश की थी। शायद इसी बात का इंतजार कर रहे थे राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, जिन्होंने वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग रख डाली।
आज भली भांति जानते हुए कि मैं ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही हूं जो भारत में अनगिनत कानून तोड़कर भागा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद उन्होंने इस काम को किया, उसके बाद ईमेल से साफ उजागर होता है कि वो व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड नहीं जा सकी, लेकिन ललित मोदी जी का पूर्ण समर्थन उन्होंने किया है।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी आज उस लंबी लिस्ट का हिस्सा बने, जिसमें सभी ने सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे से जल्द सफाई मांगी है। लेकिन भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वसुंधरा मामले में अभी और बयान आने की तरफ इशारा किया है।
As regards the Rajasthan issue, the details will have to be inquired into.
रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि वसुंधरा राजे के ऊपर लगाए जा रहे आरोपों के तथ्यों को देखा जाना बाकी है और वसुंधरा राजे खुद भी इस पर विस्तार से बयान देंगी। ललित मोदी विवाद मामले में अभी बहुत से पिटारे खुलने बाकी लग रहे हैं और कई लोगों को अपने फैसलों पर जवाब भी देना पड़ सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि इस मामले में एनडीए सरकार को अब तक का अपना सबसे बड़ा इम्तिहान जरूर नजर आ रहा होगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
तो जैसा कि आपने नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट में सुना, ऐसी भी खबरें आई थी कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ललित मोदी की मदद की थी। वहीं इस सवाल के जवाब में ललित मोदी ने एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि वसुंधरा उनकी 30 साल पुरानी पारिवारिक मित्र हैं और वही उनकी बीमार पत्नी को इलाज के लिए पुर्तगाल लाई थी। आज इस खबर पर नजर बनाए हुए थे नितिन श्रीवास्तव, मैंने इस बारे में उनसे और जानकारी मांगी।
सुशीला, ललित मोदी के पूर्वज जो थे वो तो मोदीनगर उत्तर प्रदेश के थे, जहाँ पर उन्होंने तमाम फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित की थी, जिसकी वजह से उस शहर का नाम मोदीनगर पड़ा। लेकिन ललित मोदी जो है उनका जन्म दिल्ली में हुआ और पढ़ाई उन्होंने बिशम कॉटन स्कूल शिमला से की। शायद यही वजह थी कि उन्होंने एक बार 1992 में हिमाचल प्रदेश जाकर वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी किस्मत आजमाई, जिसमें वो पूरी तरह से असफल रहे। लेकिन ललित मोदी हौसला हारने वालों में से नहीं थे और वो 2005 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जगह बनाने में तब कामयाब हुए जब नागौर से वो चुने गए। खास बात यह है कि उन दिनों में वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री 2003 से 2008 तक थीं और उसके बाद से ललित मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद उन्होंने राजस्थान में तमाम बिजनेस व्यवसाय में भी दिलचस्पी दिखाई। एक ज़माना था जब उनके बारे में कहा जाता था कि वो रामबाग पैलेस होटल है, सबसे आलिशान होटल जयपुर का, वहाँ पर रहते थे और उसके रोड के सामने ही सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ से वो राजस्थान का क्रिकेट भी चलाते थे और व्यवसाय भी देखते थे। उनके और उनके परिवार ने कई हवेलियाँ खरीदी आमेर पैलेस में के आसपास। हालांकि बाद में उनकी जांच हुई और उन हवेलियों का मामला अभी भी कोर्ट में है। लेकिन एक तरह से ललित मोदी को वसुंधरा राजे की दोस्ती की वजह से बहुत, अगर मैं कहूं कि शह मिली तो गलत नहीं होगा, और उसके चलते उनका क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में सितारा काफी बुलंद हुआ।
ये कहा जा सकता है कि उन्हें वसुंधरा राजे की वजह से काफी फायदा हुआ, लेकिन ऐसी भी खबरें आई बीच में कि दोनों में खटपट शुरू हो गई, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ?
जी देखिए, जब से ललित मोदी का आईपीएल के मामले में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई और उस तरह की जांच हुई, बीसीसीआई से उनको हटा दिया गया, उसके बाद वो लंदन गए, जांच कई सौ करोड़ की हो गई, फिर वो लंदन से वापस नहीं आए जांच में सहयोग करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसके बाद से वसुंधरा राजे ने थोड़ी सी दूरी बढ़ा ली, बना ली थी उनसे अपनी, क्योंकि जाहिर है वो उनको एक ऐसे आदमी की तरह ट्रीट किया जा रहा था जो देश छोड़कर भागा हुआ है। और वसुंधरा राजे ने जो दोबारा इलेक्शन लड़ा जिसमें वो जीती, भारी मतों से राजस्थान में जीती, उस इलेक्शन के दौरान उसके पहले ललित मोदी ने कुछ ट्वीट किए जिसमें उन्होंने जो अब भारत के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनके खिलाफ भी कुछ बातें कहीं, और वसुंधरा राजे के खास लोगों के बारे में वसुंधरा को ही ट्विटर पर चेताने की कोशिश की कि आप इन चंद लोगों से बच के रहें। उससे ये जग जाहिर होने लगा कि अब इनमें दूरियां आ गई हैं और अब ये लोग साथ साथ नहीं कदम ताल कर रहे हैं। हालांकि ललित मोदी ने कभी वसुंधरा राजे को सीधे निशाना नहीं बनाया, लेकिन ये साफ था कि वो अब वसुंधरा राजे की स्कीम ऑफ थिंग्स जो ग्रुप है उससे बाहर हैं और अपने को शायद अलग थलग भी महसूस कर रहे हैं। और जब से वसुंधरा राजे बनी है मुख्यमंत्री, उसके बाद से ललित मोदी ने एक बार राजस्थान क्रिकेट में फिर से वापसी की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको सैक कर दिया गया, वो मामला फिर से कोर्ट में चला गया। तो साफ जाहिर है कि मुख्यमंत्री का जो सपोर्ट होता है वो इस बार ललित मोदी को नहीं मिला।
हालांकि उन्होंने साक्षात्कार है उसमें ये जरूर कहा है कि जो उनकी बीमार बीवी थी उन्हीं को जो है वसुंधरा राजे पुर्तगाल लेकर आई थी।
जी ये उन दिनों की बात है जब शायद उनके ताल्लुकात बेहतर रहे होंगे, शायद तब इस तरह के मामले नहीं उठे रहे होंगे, लेकिन पिछले डेढ़ से दो साल में जब से वसुंधरा की नई सरकार आई है और केंद्र में नई एनडीए सरकार आई है, तब से मुझे लगता है कि जो ललित मोदी और उनके बीच दूरियां थोड़ी बढ़ी हैं।
तो ललित मोदी को लेकर उठे विवाद पर पूरी नज़र लगाई हुई थी नितिन श्रीवास्तव ने। उधर शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ उन राज्यों में गिना जाता है जहां स्कूली शिक्षा की हालत खराब है। शैक्षणिक विकास सूचकांक में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। ऐसे आंकड़ों के बाद भी कल से शुरू हुए स्कूलों के सत्र में छत्तीसगढ़ ने राज्य के 3,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें अधिकांश स्कूल राज्य के आदिवासी इलाकों में है। रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ सरकार ह पहली ले आठवीं तक के हम सबो लड़का मल्ला और दसवीं तक के लड़की मल्ला 50 लाख का।
पिछले साल तक छत्तीसगढ़ में बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए टीवी रेडियो पर बजने वाला यह सरकारी विज्ञापन इस साल बंद है। लेकिन इस साल केवल विज्ञापन पर बंद नहीं हुआ, बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए और बच्चों का स्कूल जाना भी।
मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ और मेरा स्कूल बंद हो गया है। जो दूसरा स्कूल है वो बहुत दूर है, इसलिए वहाँ मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी।
बस्तर में नारायणपुर जिले के सूप गांव के बच्चे परेशान हैं। 5 साल पहले खुला गांव का स्कूल एक दिन पहले बंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना था कि स्कूल में बच्चों की संख्या कम थी। अब सूप गांव के बच्चों को जंगल और पहाड़ को पार करके पूसा गांव जाना होगा। गांव के लोगों का कहना है कि जंगल के इलाके में सुअर समेत दूसरे जानवरों का आतंक है, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ने पूसा गांव नहीं भेजेंगे। लेकिन सूप गांव अकेला स्कूल नहीं है। राज्य में एक दिन पहले शुरू हुए शिक्षा सत्र से ठीक पहले लगभग 3,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इन स्कूलों के बंद होने से राज्य के आदिवासी इलाकों के लगभग 70,000 बच्चे प्रभावित होंगे। तर्क ये दिया गया किन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम थी, कुछ किलोमीटर के दायरे में ही दूसरा स्कूल चल रहा था, शिक्षकों और भवनों के कारण परेशानी हो रही थी। इसे युक्ति युक्तकरण का नाम दिया गया। कहा गया कि इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी, भवनों की समस्या और दूसरी इसी तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन क्या सच में सरकार द्वारा 3,000 स्कूलों को बंद किए जाने भर से समस्याएं सुलझ जाएंगी? हमने ऐसी ही समस्याओं को लेकर बात की माओवाद प्रभावित बस्तर के बकावंड इलाके के कुछ शिक्षकों से।
सब मिला के 5 हो गए, 1 से 8 तक के इस कक्षा में 5 शिक्षक हो गए, और उसका हमेशा से हम लोगों को सर परेशानी हो रहा है। 5 जन 1 से 8 तक पढ़ाना बोलने से मुश्किल है, कभी कभी तो 1-2 कक्षा को पढ़ा नहीं पाते हम लोग।
मुश्किल है सर, अभी इस वक्त हम ले रहे हैं पढ़ाई में बिल्कुल, और बच्चे को खुराक नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में, और मिडिल में है 41।
पढ़ने के लिए जो बताए ना 80% बच्चे आते ही हैं।
लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री केदार कश्यप इन समस्याओं से बेफिक्र हैं। 3,000 स्कूलों के बंद होने के बाद भी केदार कश्यप का दावा है कि इस साल 6,00,000 से अधिक बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा।
पूरे प्रदेश में हमारा जो टारगेट है 6,50,000 हमारे बच्चों को इस शिक्षा सत्र में प्रवेश दिलाने का। सभी स्कूलों में तैयारियां हो चुकी हैं, हमारे सारे अधिकारीगण लग चुके हैं, शिक्षक भी लग चुके हैं। कुछ एक स्थानों पर खामियां हैं, उन खामियों को भी हम दुरुस्त करें और इस 15 दिन के भीतर में हमारे जो कोशिश है कि हम 6,50,000 बच्चों को हम प्रवेश दिला दें। जहां खामियां होगी उनको हम दुरुस्त करेंगे।
इन स्कूलों के बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा, यह सवाल हमने शैक्षणिक मामलों के जानकार विवेक जोगलेकर से पूछा।
कहने के लिए ही सही, परंतु एक शिक्षा का केंद्र था, अब वो वहाँ नहीं है। बात सरकार को शुरू में सोचनी थी, जब 3,000 स्कूल वहाँ खोले गए तब भी तो कुछ सोच के ही खोला गया होगा, और ये अपेक्षित था उनसे कि वो जहाँ पर स्कूल खोले हैं वहाँ पर बच्चे पढ़ें, पढ़ने जैसा माहौल बने, ताकि बंद करने की नौबत ना आए। रही बात इन स्कूलों के बंद होने के दुष्परिणाम की, तो दुष्परिणाम तो ये होगा कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा।
क्या यह बच्चों को निजी स्कूलों की तरफ धकेलने की भी कोशिश है?
क्योंकि जिन जगहों के स्कूल बंद हो रही है ना, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेंगे सर, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। प्राइवेट स्कूल नाम से जो प्राइवेट लोग स्कूल्स खोलती हैं वो उनका बिजनेस है, उनको पैसा चाहिए। और जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है उन स्कूलों में जाने वाला बच्चा फ्री में पढ़ता है, इसलिए जाता है। अगर वो नहीं वहाँ मौका मिलेगा तो कहीं नहीं जाएगा। कि बच्चे स्कूल बंद हो रहे हैं ये उनका दुर्भाग्य है।
छत्तीसगढ़ शैक्षणिक विकास सूचकांक के मामले में 35 राज्यों में 28वें नंबर पर है। सरकार के ताज़ा कदम का इस सूचकांक पर कितना फर्क पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
आप सुन रहे हैं दिनभर सुशीला सिंह के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से फोन पर बातचीत की। ये बातचीत 5 मिनट तक चली। म्यांमार में भारतीय सेना की कार्रवाई और नेताओं के बयानों की पाकिस्तान ने कड़े शब्दों में निंदा की थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई है। लेकिन अब इस बातचीत को दोनों देशों के संबंधों में तनाव को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। मैंने अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद फोन कर आसिफ फारूकी से फोन पर इस बातचीत के बारे में विवरण मांगा।
देखिए, जो सरकार की तरफ से बताया गया है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जो रमज़ान की आमद है इसके बारे में, रमज़ान के महीने के शुरू होने पर मुबारकबाद दी और भारत की तरफ से नेक जो ख्वाहिशात हैं वो पहुंचाई। दूसरी बात, वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जो कहा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से, वो ये है कि वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, जिसके जवाब में नवाज शरीफ ने भी इसी तरह की बातें की कि दोनों मुल्कों को अपने इख्तलाफात भुलाकर और जंग की बातों के बजाय अमन की बात करनी चाहिए, ताकि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, अवाम जो है, वो उनकी हालात बेहतर हो सकें और वो अपने लीडर्स को जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, ना कि ऐसे लीडर्स के तौर पर याद करें जिन्होंने जंग करने की बात की और लड़ाई भिड़ाई जो है उसको बढ़ाने की कोशिश की।
जी, तो इस बातचीत के बाद जिस तरह से म्यांमार में भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की थी उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी तेज़ और तलखी भरी टिप्पणियाँ की जा रही थी, तो आपको क्या लगता है कि अब ये जो बातचीत हुई है इससे वो तलखी जो है कम होगी?
जी, इम्कान इसी बात का है कि जो अब इतने हाईएस्ट लेवल पे जब कांटेक्ट होता है तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव ज़रूर होती है। पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से पहले भी, ये कुछ रोज़ पहले हमारी बात हुई थी, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं ऑन फॉरेन अफेयर्स तारिक फातमी, उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है कि दोस्त मुल्क बीच में आए ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन है उसको कम करने की कोशिश की जाए। तो लगता यही है कि जो अमरीकी फॉरेन सेक्रेटरी जॉन कैरी ने टेलीफोन किया है भारतीय प्रधानमंत्री को भी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भी, वो भी इसी सिलसिले में था। और उसके बाद चूंकि दोनों फिर देशों के दरमियान ये हाईएस्ट लेवल पे रबता हुआ है, तो उसके बाद लगता यही है कि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि कुछ तनाव की जो कैफियत है वो कम हो जाए। और हमने भी माजी में देखा है, पहले भी ऐसा हुआ है जब अमरीका की तरफ से इंटरफेरेंस होती है तो उसके बाद हालात जो है वो कुछ बेहतर ज़रूर होते हैं।
जी, और इस फोन कॉल को मीडिया में किस तरह से लिया गया है वहाँ की?
पाकिस्तानी मीडिया में तो साफ साफ ये कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों जो है उन्होंने ये तय किया है, दोनों लीडर्स ने, कि वो एक दूसरे के खिलाफ बयान जो जारी नहीं करेंगे, जो कड़वी कड़वी बातें की जा रही थी दोनों तरफ से, तो इन दोनों ने तय किया है कि वो कम से कम अब इतना ज़रूर करेंगे कि अपने लीडर्स जो अपने मिनिस्टर्स हैं उनसे भी ये कहेंगे कि वो जो इश्तियाल अंगेज या इस तरह के जो सख्त स्टेटमेंट्स हैं वो जारी ना करें।
ये थे इस्लामाबाद से आसिफ फारूकी। मध्यपूर्व में कब्जे के लिए कदम बढ़ाते इस्लामिक स्टेट के सामने कुर्द लड़ाकों की दीवार आ खड़ी हुई है। ये वो बाधा है जिसका अंदाजा शायद इस्लामिक स्टेट के खलीफा को नहीं था। कुर्द लड़ाकों के लश्कर में शामिल महिलाओं का हौसला भी देखने लायक है। कौन है ये कुर्द लड़ाके जो जमीन पर खड़े होकर इस्लामिक स्टेट को रोक रहे हैं? उनके इस मजबूत प्रतिरोध की वजह क्या है? दुनिया जहां में आज यही जानने की कोशिश कर रहे हैं निखिल रंजन।
दुनिया जहान। इस्लामिक स्टेट ने जब अपने खिलाफत का ऐलान किया और दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए कदम बढ़ाए तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुन्नी मुसलमानों के बहुतायत वाली मध्य पूर्व की एक जाति उनकी राह रोकने के लिए पूरे दमखम के साथ तैयार खड़ी मिलेगी। दुनिया उन्हें कुर्द लड़ाकों के रूप में जानती है। पारंपरिक रूप से लड़ाके रहे कुर्दों के पास बेहतर युद्ध कौशल और मजबूत नैतिक बल है। आपस में टकराव नहीं और किसी पर कब्जा करने की नियत नहीं। इस्लामिक स्टेट के उलट जंग लड़ने का उनका अनुभव पुराना है, जो ओटोमन साम्राज्य से लेकर विश्व युद्धों और सद्दाम हुसैन के शासन तक जाता है। और अब तो अमरीका के साथ ही पश्चिमी देशों की मदद भी उनके पास है। इराक हो या सीरिया, आसमान पर भले ही अमेरिका या कोई और देश हो, लेकिन इस्लामिक स्टेट के सामने जमीन पर कुर्द ही हैं। डॉक्टर फजल रहमान ICWA के सीनियर फेलो और मध्य पूर्व के जानकार हैं। वो बताते हैं,
इनकी पूरी तारीख भरी हुई है जंग से, लड़ाई से, अपनी टेरिटरी को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी माइथोलॉजी को लेके, अपनी लैंग्वेज को लेके, ये पिछले 100 साल से बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही कंपेरिटिवली इस स्टेट से लड़े हैं।
इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की ये देखकर ही जान निकल जाती है कि ट्रिगर पर उंगलियां और निशाना लगाने वाली आंखें औरतों की हैं। कोई उनके हाथ मरने को तैयार नहीं, क्योंकि अंधविश्वास कहता है कि फिर जन्नत नहीं दोजख में जाना पड़ेगा। लेकिन मारने वालों पर इसका कोई असर नहीं, वो तो चुन चुन कर निशाना बना रही हैं। इनकी लड़ाई के जज्बे को देख इसराइल भी हैरान है। क्या कुर्द महिलाओं को ज्यादा आजादी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले प्रोफेसर आरशी खान।
देखिए, महिलाओं को आजादी तो है जब इतनी बड़ी कम्युनिटी हो, जिसके लोग ईरान में हो, सीरिया में हो, टर्की में हो, और बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और नेचुरली जो ट्राइब्स होते हैं, जो ट्राइबल लाइफ है, तो उसमें वीमेन का बहुत नेचुरली फ्रीडम तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मिलजुल के रहना और ज्यादा इक्वलिटी है इसमें, वीमेन का काफी इंटीग्रेशन है मेल से।
हालांकि जानकार कुर्द संस्कृति को भी इसकी वजह बताते हैं। उनके मुताबिक ये समाज प्रगतिशील है और महिलाओं को पर्दा करने पर मजबूर नहीं करता। भारत की तरह मसालेदार खाने के शौकीन कुर्द काफी प्रगतिशील रहे हैं और जब जहां मौका मिला दुनिया के अलग अलग हिस्सों से संबंध जोड़कर अपने लिए रास्ता बना लिया है। कई यूरोपीय देशों में तो इनके अलग टीवी चैनल भी हैं। प्रोफेसर आरशी खान,
इनकी अपनी एक सॉलिड रूरल इकोनॉमी है, रीजनल इकोनॉमी है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एजुकेशन में भी काफी आगे ये जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी लेबर फोर्स में ये हैं काफी, एनजीओज इन्होंने काफी एस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटीज में हैं बाहर में भी, और काफी मतलब आप देखेंगे कि यूरोपियंस और अमेरिकन्स ने भी काफी इनको सपोर्ट दिया, खास करके 1991 के बाद।
मध्य पूर्व की चौथी सबसे बड़ी कबीलाई जाति कुर्द के लिए पहाड़ घर है और जंग का मैदान काम की जगह। अलग पहचान, भाषा, रहन सहन, खान पान और भौगोलिक स्थिति के बावजूद कुर्दों के पास अपना कहने को देश नहीं। ये तकलीफ और बढ़ जाती है जब इनकी इस मांग पर गौर करने की बजाय उसे क्रूर तरीके से दबा दिया जाता है। करीब 4 करोड़ की आबादी वाला ये समुदाय इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान और अर्मेनिया की राजनीतिक सीमा में बटा है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अपना देश हासिल करने के लिए हर जगह संघर्षरत है। डॉक्टर फजल रहमान,
जब वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जब पूरा का पूरा अरब वर्ल्ड अपने नेशनल फॉर्मेशन, नेशनल इवोल्व कर रहा था, उस वक्त इनकी फाइट चल रही थी कि हमको भी एक नेशन स्टेट, एक सेपरेट ज्योग्राफिकल या टेरिटोरियल एंटिटी के तौर पे हमको देखा जाए। इनके पास एक नेशन होने के लिए वो सारी चीजें हैं, इनके पास लैंग्वेज है, इनके पास अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है, इनके पास इनकी माइथोलॉजी है, इनके पास अपनी हिस्ट्री है, इनके पास आइडेंटिटी है, इनके पास जो फोकलोर है, उनके पास सारी चीजें हैं सिवाय स्टेट के।
इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता मिटने के बाद कुर्दों को अपने इलाके में काफी हद तक आजादी मिल गई। सीरिया में वो संघर्ष कर रहे हैं लेकिन वहां उनकी तादाद कम है। तुर्की में इनकी आबादी ज्यादा है लेकिन मजबूत देश उनकी मांगों के लिए जगह बनाने को तैयार नहीं। ईरान का भी कमोबेश यही हाल है। ऐसे में कुर्दों को अपना देश मिल सकेगा ये कहना मुश्किल है। हाँ, बीते सालों में ये जरूर हुआ है कि स्थानीय जंगों के बीच उन्होंने अपनी छोटी छोटी आजादी के लिए राह बनाई है। डॉक्टर फजल रहमान,
इराक पे जब अमेरिका ने इन्वेजन किया 2003 में, उसके बाद इन्होंने तकरीबन वहां पे एक पूरे नॉर्दर्न इराक में एक इन्होंने कुर्दिस्तान रीजन एस्टेब्लिश कर लिया। आज के दौर में तकरीबन वो एक इंडिपेंडेंट कुर्दिश स्टेट है, या ये कहें कि काफी इंडिपेंडेंट स्टेट है और उनके पास अपनी की पार्लियामेंट है, उनके अपने प्रेसिडेंट हैं, यहाँ तक कि उनके बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से, फॉर एग्जाम्पल तुर्की से, उनकी सारी सेपरेट एग्रीमेंट हैं, वो ऑयल सप्लाई करते हैं। तो जब जब डिस्टर्बेंस होता है तब तक वो ऑटोनॉमी को अपनी कार्व आउट करने की कोशिश करते हैं।
इराक में पेशमरगा, सीरिया में पॉपुलर प्रोटेक्शन यूनिट YPG और तुर्की में तुर्किश कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी कुर्द राष्ट्र का सपना सच करने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इसका असर अब दुनिया को दिख रहा है। कुर्दों को अपना देश मिले न मिले, इस्लामिक स्टेट के खिलाफत मुश्किल जरूर झेलेगी। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
आपको कुर्द लड़ाकुओं पर प्रस्तुत की गई निखिल रंजन की का दुनिया जहां कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। और अब समय है खेल की खबरों का। विदित, क्या
जी सुशीला जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि लंदन में चल रहा है एगॉन चैंपियनशिप, जिसे क्वींस क्लब भी कहा जाता है, वहां पर कल ब्रिटेन के ही एंडी मरे ने सीधे सेटों में चाइना के येन हुसन लो को 6-4, 7-5 से हरा दिया। एंडी ने ये 1.5 घंटे में ये मैच खत्म किया और सबसे अच्छी बात ये थी इस मैच की कि शुरुआत में तो एंडी काफ़ी ढीले रहे, बाद में उन्होंने सेकंड सेट में रफ्तार पकड़ी और वो खुद ये मानते हैं कि वो थोड़ा सा लेट आए पर फिर भी सर्विस में उन्होंने काफ़ी सुधार किया। अब बात करते हैं क्रिकेट की। कल भारत और बांग्लादेश के बीच पहला एक दिवसीय मैच खेला जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और वहाँ पर बारिश हो रही है और विजय लोकपल्ली जो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनसे हमने बात की थी तो वो कह रहे थे कि इस कप का नाम मॉनसून कप होना चाहिए क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, पता नहीं है कि मैच होगा या नहीं होगा। वैसे ये मैच कल 3 बजे शुरू हो जाएगा तो उम्मीद ये है कि बारिश ना हो और ये मैच चलता रहे।
खेल समाचार सुना रहे थे विदित मेहरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
पूर्व IPL कमिश्नर ललित मोदी की मदद करने के मामले में कांग्रेस ने फिर की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग। पलामू मुठभेड़ मामले में झारखंड राज्य के मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस भेजकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। 9 जून को CRPF और पलामू पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कथित तौर पर 12 माओवादी मारे गए थे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के राजदूत रूस पर लगे प्रतिबंधों को 6 महीनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।